एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व के श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगा रहे हैं जहाँ इतिहास, रोमांच और मानवीय भावनाएं सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। हम बात कर रहे हैं तमिल साहित्य के एक कह सकते अनमोल रत्न की, कल्की कृष्णमूर्ति के कालजयी उपन्यास पोनियन सेल्वन की।
हाँ, कल्की कृष्णमूर्ति, जिन्हें रामास्वामी कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, वो सिर्फ लेखक नहीं थे, वो तो तमिल संस्कृति को एक नई दिशा देने वाले थे एक तरह से।
बिल्कुल, उनका उपनाम कल्की, विष्णु के अंतिम अवतार का प्रतीक, ये उनके विश्वास को दिखाता था ना कि साहित्य समाज को बेहतर बना सकता है।
सही कहा। और पोनियन सेल्वन जो 1950 के दशक में मतलब सीरीज के तौर पे छपा था कल्की पत्रिका में, वो तो उनकी सबसे महान रचना मानी जाती है, एक ऐसा महाकाव्य जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है।
तो आज हम इसी उपन्यास के किरदारों को समझेंगे, कहानी के उतार चढ़ाव और इसके जो गहरे संदेश हैं उन पे बात करेंगे।
जरूर।
तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं समय में। 1000वीं शताब्दी, चोल साम्राज्य अपने शिखर पे है, कला, संस्कृति, शासन व्यवस्था सब कुछ बेहतरीन।
हाँ, उस समय का माहौल ही अलग था। भव्य मंदिर, उन्नत प्रशासन, दूर दूर तक व्यापार।
सम्राट सुंदरचोल तंजावुर में है पर उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो महल तक ही सीमित है। ऐसे में सबकी नजरें अगली पीढ़ी पर हैं। बड़े राजकुमार आदित्य करिकालन, वो तो कांची में सेना संभाल रहे हैं, जबरदस्त योद्धा हैं।
और छोटे राजकुमार अरुल मोड़ी वर्मन, जिन्हें हम पुनियन सेल्वन के नाम से जानेंगे, वो उस वक्त श्रीलंका में हैं एक जरूरी सैन्य अभियान पर।
हाँ, और उनकी बहन राजकुमारी खुंदवई, वो पड़यारे महल से ही अपनी राजनीतिक सूझबूझ दिखा रही हैं। ऊपर से सब शांत लगता है पर अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है ना?
हाँ बिल्कुल, और यहीं से कहानी का असली ताना-बाना शुरू होता है। साम्राज्य के भीतर ही सत्ता का संघर्ष है, षड्यंत्र है।
कौन कर रहा है ये षड्यंत्र?
कुछ ताकतवर सामंत हैं, खासकर खजांची पेरिया पड़ुवेट्टायर। वो लोग सम्राट के चचेरे भाई मदुरांतक उत्तम चोल को सिंहासन पर बैठाने की गुप्त योजना बना रहे हैं।
अच्छा।
और इस सबके बीच में एक रहस्यमयी किरदार का जिक्र आता है, नंदिनी।
हाँ, नंदिनी
पेरिया पड़ुवेट्टायर की युवा पत्नी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में चोल राजवंश के लिए गहरी नफरत है, बदले की आग है।
तो वो इस षड्यंत्र में शामिल है?
शामिल ही नहीं, वो तो इसे हवा दे रही है अपनी बुद्धि, अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके। वो जैसे आग में घी डालने का काम कर रही है।
बाप रे, तो माहौल काफी तनावपूर्ण है। और इसी उथल पुथल के बीच एंट्री होती है हमारे हीरो की, वल्लवरायन वंदियदेवन की।
हाँ, वंदियदेवन वानर कुल का एक बहादुर नौजवान, थोड़ा मनमौजी भी है, हाजिर जवाब है।
उसे क्या काम मिलता है?
युवराज आदित्य करिकालन उसे एक बहुत जरूरी काम सौंपते हैं, कुछ गुप्त संदेश हैं जो उसे सम्राट और राजकुमारी कुंदवई तक पहुंचाने हैं।
और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। एक साधारण सा काम लगता है पर
वो अनजाने में ही चोल साम्राज्य की राजनीति, प्यार और साजिशों के भंवर में खींचता चला जाता है। उसकी यात्रा ही मतलब पूरी कहानी को हमारे सामने खोलती है।
वंदियदेवन का किरदार बड़ा दिलचस्प लगता है। वो पाठक की तरह है ना, बाहर से आता है और धीरे धीरे सब कुछ समझने लगता है।
बिल्कुल, वो सिर्फ संदेशवाहक नहीं रहता, अपनी हिम्मत, वफादारी और क्या कहते हैं, चतुराई से वो दरबार का एक अहम हिस्सा बन जाता है।
और राजकुमारी कुंदवई के प्रति उसका आकर्षण वो कहानी में एक और परत जोड़ता है।
हाँ, उसका सफर सिर्फ कर्तव्य का नहीं रहता, दिल का भी बन जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे वो एक अल्हड़ योद्धा से एक ज्यादा परिपक्व, जिम्मेदार इंसान बनता है।
और फिर है शीर्षक पात्र, अरुल मोड़ी वर्मन यानी पोनियन सेल्वन, भविष्य के महान राजा चोल प्रथम।
और कल्की ने उन्हें एक आदर्श राजकुमार की तरह पेश किया है, बुद्धिमान, दयालु, वीर, प्रजा उन्हें बहुत चाहती है, सैनिक भी।
और सबसे बड़ी बात, उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है,
जरा भी नहीं। वो बार बार सिंहासन को ठुकराते हैं, उनके लिए न्याय, परिवार का सम्मान, प्रजा का भला, ये ज्यादा जरूरी है।
उनकी जिंदगी भी आसान नहीं रही होगी, खतरों से सामना हुआ होगा।
हाँ, तूफानों से बचना, हत्या की कोशिशें। कहते हैं एक बार वो कावेरी नदी में डूबने से बचे तो लोगों ने कहा कि पुन्नी मतलब कावेरी माँ ने उन्हें बचाया है, तभी से नाम पड़ा पोनियन सेल्वन, कावेरी का बेटा।
वाह, उनका जीवन तो जैसे धर्म और सहिष्णुता का पाठ है। सची है, असली राजा वो है जो प्रजा की सेवा करे, न कि जिसकी सेवा प्रजा करे।
और राजकुमारी कुंदवई, उनका क्या रोल है?
कुंदवई वो तो अद्भुत है, चोल राजवंश की असली रणनीतिकार। उस जमाने में जहां पुरुषों का दबदबा था, कुंदवई अपनी बुद्धि और दूरदर्शिता से राजनीति पर गहरा असर डालती हैं।
उनकी प्राथमिकता क्या है?
हमेशा चोल साम्राज्य की भलाई और परिवार की सुरक्षा। वो पर्दे के पीछे रह के काम करती हैं, जासूसों को निर्देश देना, संधियां करवाना।
और उनके किरदार में ये देखना भी दिलचस्प है कि वो अपनी निजी भावनाओं, खासकर वंद्यादेवन के लिए और राज्य के प्रति कर्तव्य के बीच कैसे संतुलन बनाती हैं।
हाँ, वो दिखाती है कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, दिमाग में भी होती है।
लेकिन हर कहानी में नायक हैं तो खलनायक भी होते हैं, या कहें दुखद पात्र। आदित्य करिकालन का क्या?
आदित्य करिकालन, हाँ, वो कहानी का दुखद पहलू है। महान योद्धा है, पर बहुत गुस्से वाले, आवेगी और अपने अतीत से बहुत त्रस्त।
अतीत मतलब नंदिनी से जुड़ा कुछ?
हाँ, नंदिनी के साथ उनका युवावस्था का प्यार और फिर उससे मिला धोखा, उसने उनके दिल पर गहरे जख्म छोड़े हैं। ये दर्द उन्हें अस्थिर बना देता है, अप्रत्याशित। उनकी कहानी एक दुखद रास्ते पर जाती है। शायद कहानी के सबसे त्रासद पात्र वही हैं।
और नंदिनी, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो सिर्फ एक खलनायिका है या कुछ और भी?
वो सिर्फ खलनायिका नहीं है, तमिल साहित्य के सबसे जटिल, सबसे यादगार किरदारों में से एक है। वो अद्वितीय सुंदरी और उतनी ही तेज दिमाग वाली।
वो अपनी सुंदरता को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है ना, पेरिया पड़वेट्टायर जैसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए।
बिल्कुल, उसका एक ही मकसद है, चोल परिवार से बदला। वो उन्हें अपने प्रेमी वीर पांडियन की मौत और अपनी जिंदगी की तबाही का जिम्मेदार मानती है।
लेकिन कल्कि उसे सिर्फ बुरा नहीं दिखाते।
औरत जिसे मिले जख्मों ने नफरत के रास्ते पर धकेल दिया, उसकी असली पहचान, पांड्य वंश से उसका क्या रिश्ता है, ये सब कहानी का एक बड़ा रहस्य है।
ये किरदार सोचने पर मजबूर करता है, कैसे सुंदरता और बुद्धि का मेल जब नफरत से जुड़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है।
इन किरदारों के आपसी रिश्ते भी कहानी को गहराई देते हैं, जैसे वंद्यादेवन और अरुलमोड़ी वर्मन की दोस्ती।
हाँ, जो वर्ग भेद से परे हैं, एक राजकुमार और एक सामान्य योद्धा के बीच इतनी गहरी दोस्ती।
और कुंदवई और वंद्यादेवन के बीच पनपता वो रिश्ता, जहां प्यार और कर्तव्य आमने सामने हैं।
और आदित्य करिकालन और नंदिनी की वो अधूरी दुखद प्रेम कहानी, जो दिखाती है कि कैसे निजी दुख और महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक भूचाल ला सकती हैं। रिश्ते कहानी को बहुत मानवीय बनाते हैं।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? उपन्यास 5 हिस्सों में है, आपने बताया।
हाँ, पहला हिस्सा है पुदुवल्लम, पहली बार। इसमें वंद्यादेवन कांची से अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में उसे कुछ अशुभ संकेत दिखते हैं, जैसे आसमान में धूमकेतु,
और वो अनजाने में षड्यंत्र की बातें सुन लेता है।
हाँ, उसकी मुलाकात रहस्यमयी जासूस आड़वार कड़ियान नंबी से होती है, और आकर्षक नंदिनी से भी। वो जैसे तैसे कुंदवई तक संदेश पहुंचाता है,
और कुंदवई उसकी काबिलियत पहचान लेती हैं।
बिल्कुल, और उसे एक और ज्यादा मुश्किल काम सौंपती हैं, लंका जाकर अरुलमोरी वर्मन को वापस लाना।
यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। एक साधारण संदेशवाहक अब एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है। रहस्य, खतरा, सब बढ़ जाता है।
दूसरा हिस्सा है सुडल काट्रू, चक्रवात। ये हमें लंका ले जाता है। वहां अरुलमोरी वर्मन अपनी बहादुरी दिखा रहा है, सफल अभियान चला रहा है।
वंद्यादेवन वहां पहुंचता है।
हाँ, पहुंचकर राजकुमार से मिलता है, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वंद्यादेवन उसे घर पर चल रही साजिशों के बारे में बताता है,
और राजकुमार की जान को भी खतरा होता है।
हाँ, पांड्य वंश के हत्यारे जो नंदिनी से जुड़े हैं उसे मारने की कोशिश करते हैं। फिर आती है वो भयानक समुद्री यात्रा। अरुलमोड़ी वर्मन और वंद्यादेवन एक जबरदस्त चक्रवात में फंस जाते हैं।
उनका जहाज
टूट जाता है, राजकुमार समुद्र में लापता हो जाता है। सब मान लेते हैं कि वो मारे गए।
ये तो बहुत बड़ा मोड़ है कहानी में। राजकुमार की मौत की खबर पूरे साम्राज्य को हिला देती होगी।
बिल्कुल, ये घटना न केवल कहानी में तनाव बढ़ाती है, बल्कि अरुलमोड़ी वर्मन के चरित्र की परीक्षा भी लेती है, और यहीं पर नियति का खेल भी नजर आता है।
तीसरा हिस्सा कोलाए वाल, हत्या की तलवार। इसमें क्या होता है?
राजकुमार की मौत की खबर से अराजकता फैलती है, षड्यंत्रकारियों को मौका मिल जाता है मधुरांतक को राजा बनाने का।
लेकिन
कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अरुलमोड़ी वर्मन जिंदा है।
कैसे? कौन बचाता है उसे?
उसे एक मूक रानी मंदाकिनी देवी बचाती हैं, और वो रहस्यमय ढंग से नंदिनी जैसी दिखती है। फिर एक नाविक है पुंगुकली, वो उसे छुपा कर रखती है।
और नंदिनी का राज भी इसी हिस्से में खुलता है।
हाँ, उसकी असली पहचान, पांड्य राजा वीर पांड्यन से उसका रिश्ता, ये सब सामने आता है। उसके बदले की वजह और साफ हो जाती है।
रहस्य और गहराता जा रहा है। मंदाकिनी कौन है, नंदिनी का अतीत क्या है, ये सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं बल्कि पुराने जख्मों और छुपे हुए रिश्तों की कहानी भी है।
बिल्कुल। चौथा हिस्सा मणिमगुडम मुकुट कहानी को उसके चरमोत्कर्ष मतलब क्लाइमैक्स पर ले जाता है।
इसमें आदित्य करिकालन का क्या होता है?
आदित्य भाई की मौत के गम और नंदिनी के उकसावे भरे खतों से परेशान होकर उससे मिलने कदम्बूर के महल पहुंच जाता है, सीधे षड्यंत्रकारियों के जाल में।
और वहाँ?
वहाँ एक बहुत तनावपूर्ण माहौल बनता है। आदित्य, वंद्यदेवन और नंदिनी का आमना सामना होता है। अचानक अंधेरा छा जाता है
और जब रोशनी वापस आती है,
युवराज आदित्य करिकालन मृत पाए जाते हैं। उनके सीने में तलवार धंसी हुई है और पास में वंद्यदेवन तलवार पकड़े मिलता है। उसी पर हत्या का इल्जाम लगता है।
ओह, ये तो दिल दहला देने वाला है। आदित्य का अंत इतना दुखद और वंद्यदेवन का फंसना, असली कातिल कौन है?
ये सवाल कहानी में और ज्यादा तनाव भर देता है। पांचवा और आखिरी हिस्सा है त्याग सिगरम, त्याग का शिखर। ये इस गुत्थी को कुछ हद तक सुलझाता है।
वंद्यदेवन अपनी बेगुनाही साबित कर पाता है?
वो भागता फिरता है, कोशिश करता है, तभी अरुलमोडी वर्मन राजधानी लौटता है। उसकी वापसी से ही शांति आने लगती है। वो बड़ी कुशलता से हत्या की जांच करवाता है, पांड्य साजिश का पर्दाफाश करता है, दोषियों को सजा मिलती है।
लेकिन असली कातिल आदित्य को किसने मारा?
ये थोड़ा अस्पष्ट ही रहता है, पूरी तरह साफ नहीं होता। नंदिनी अपना बदला पूरा होने के बाद गायब हो जाती है।
और अंत में क्या होता है? अरुलमोडी वर्मन राजा बनता है।
अंत में जब सभी सरदार और प्रजा उसे राजा बनाना चाहते हैं, तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जो सबको हैरान कर देता है। वो सिंहासन ठुकरा देता है।
ठुकरा देता है, क्यों?
वो अपने चाचा मदुरांतक को सम्राट घोषित करता है। ऐसा करके वो अपने पिता के वचन का मान रखता है और चोल साम्राज्य को गृह युद्ध से बचा लेता है।
वाह, ये तो सचमुच त्याग का शिखर है। उपन्यास इस उम्मीद पर खत्म होता है कि वो एक दिन राजा बनेगा।
हाँ, लेकिन सही समय आने पर, अपनी शर्तों पर।
ये अंत वाकई बहुत प्रभावशाली है। अरुलमोडी वर्मन का त्याग दिखाता है कि असली नेतृत्व क्या होता है। और कातिल की थोड़ी अस्पष्टता पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई गहरे सबक भी देता है।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सबक तो शायद कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत इच्छा का है, धर्म और काम का संघर्ष।
हाँ, ये चीज तो लगभग हर मुख्य किरदार की जिंदगी में दिखती है। अरुलमोडी वर्मन और कुंदवई जैसे किरदार अपने फर्ज को अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रखते हैं, है ना?
सही कहा। अरुलमोडी वर्मन का सिंहासन त्यागना, कुंदवई का राज्य के लिए अपने दिल की आवाज दबाना, ये सब इसके उदाहरण हैं।
और दूसरी तरफ आदित्य करिकालन है जो अपनी निजी पीड़ा और गुस्से में तबाह हो जाते हैं।
और नंदिनी, वो तो अपना पूरा जीवन ही बदले की आग में झोंक देती है। ये दिखाता है कि ये संतुलन साधना कितना मुश्किल और कितना जरूरी है।
दूसरा अहम संदेश सच्चे नेतृत्व के बारे में है। अरुलमोडी वर्मन की तुलना जब हम दूसरों से करते हैं तो साफ दिखता है कि सच्चा नेता वो है जो प्रजा की सेवा करे। उसकी ताकत उसके पद में नहीं, उसके चरित्र में है।
और लोग भी उसे इसीलिए चाहते हैं। वो न्यायप्रिय है, दयालु है, त्यागी है। उसने सम्मान कमाया है, सिर्फ अधिकार नहीं जताया।
नंदिनी का किरदार हमें सिखाता है कि बदला लेना कितना विनाशकारी हो सकता है। उसकी कहानी एक चेतावनी है, नफरत आखिरकार बदला लेने वाले को ही जला देती है।
हाँ, उसका अंत दिखाता है कि बदले से मिली जीत कितनी खोखली होती है। सब कुछ पाकर भी वो शायद सब कुछ खो देती है।
और वफादारी और धोखा, ये भी कहानी में लगातार चलता है। वंद्यादेवन की अटूट वफादारी एक तरफ तो दूसरी तरफ सत्ता के लिए धोखा देने वाले सामंत।
हाँ, ये हमें रिश्तों की जटिलता और भरोसे के महत्व को समझाता है।
और किस्मत और कर्म का सवाल भी। कहानी में संकेत मिलते हैं जैसे धूमकेतु, लगता है सब तय है।
लेकिन फिर भी किरदार अपने चुनाव खुद करते हैं, उनके फैसले ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब नियति के खेल में भी इंसान की अपनी भूमिका है।
अब थोड़ी बात करते हैं कल्कि की, लिखने की कला की। उनकी शैली बहुत खास है। वो एक ऐसे कथावाचक की तरह है जिसे सब पता है, पर अक्सर वंद्यादेवन की आंखों से दुनिया दिखाते हैं।
हाँ, इससे पाठक कहानी से जुड़ जाता है। जैसे वो खुद वंद्यदेवन के साथ सफर कर रहा हो, और उनका लिखने का अंदाज बिल्कुल सिनेमाई है, दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं।
और वो क्लिफ हैंगर का इस्तेमाल, क्योंकि ये सीरीज में छपता था तो वो कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ते थे कि बस अगले अंक का इंतजार रहता था।
और भाषा, शब्दों से चित्र बना देते हैं वो। कावेरी नदी, मंदिर, खेत, प्रतीकों का भी खूब इस्तेमाल है। कावेरी नदी जैसे जीवन और भाग्य का प्रतीक है, कमल, तलवार, सबके अपने मायने हैं।
और वो पूर्वाभास, इशारों में बता देना कि आगे क्या हो सकता है।
हाँ, और कभी कभी पाठक को ज्यादा पता होता है किरदार से, उससे तनाव और बढ़ जाता है। कुंदवई की रणनीति को देखकर लगता है जैसे नदी चट्टानों से टकराती नहीं, रास्ता बनाकर आगे बढ़ जाती है।
इस उपन्यास का सबसे बड़ा जादू शायद इसका भावनात्मक जुड़ाव है। पढ़ते हुए हम भूल जाते हैं कि यह हजारों साल पहले की कहानी है। हम किरदारों के साथ हंसते हैं, रोते हैं।
हाँ, कल्कि ने इतिहास के पन्नों से किरदारों को निकालकर उन्हें हमारे बीच लाकर खड़ा कर दिया है। ये पाठकों में अपनी संस्कृति और इतिहास के प्रति गर्व जगाता है।
और यही वजह है कि ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक है। मानव स्वभाव, प्यार, नफरत, महत्वाकांक्षा, त्याग, ये सब तो आज भी वैसा ही है।
हाँ, नेतृत्व का सही मतलब क्या है, कर्तव्य और इच्छा के बीच संतुलन, ये सवाल आज भी अहम है। इसने इतिहास को कई लोगों के लिए एक रोमांचक कहानी बना दिया।
और कुंदवई जैसी मजबूत, बुद्धिमान महिला पात्र, ये भी इसके एक बड़ी देन है।
तो अंत में ये उपन्यास हमें क्या सिखाता है?
शायद यही कि सच्ची महानता शक्ति हासिल करने में नहीं, बल्कि चरित्र, त्याग और सेवा में है।
और ये भी कि इतिहास कभी गुजरता नहीं, उसकी गूंज हमेशा हमारे आज में सुनाई देती है। किसी राज्य की असली दौलत सोने चांदी में नहीं, लोगों के चरित्र में होती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।